नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और मेरे साथ है नरेन।
और जब चलें शहर की ओर की 16वीं कड़ी में आपका स्वागत है।
दोस्तों, हमें आपके द्वारा भेजे गए ढेरों खतों और SMS के जरिए पता चल रहा है कि आपको ये कार्यक्रम कितना पसंद आ रहा है। जगदीश बिष्ट, अनु और प्रकाश ढोंडियाल दिल्ली से, विजेंद्र और रजत कुमार उत्तराखंड से, विवेक मेरठ से और मोनी बिजनौर से। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके संदेशों को हमारे प्रोग्राम में शामिल करने की।
तो दोस्तों, आप हमारा कार्यक्रम ऐसे ही दिल लगाकर सुनते रहिए और हम भी आपसे वादा करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए अपने सभी प्रवासी दोस्तों को उनकी जरूरत की जानकारियां देते रहेंगे।
और हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंह मीडिया कम्बाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और अब ज्यादा वक्त न गंवाते हुए सबसे पहले सुनते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
दोस्तों, पिछली बार आपने सुना कि चंदर सुंदर का पार्सल पहुंचाने के लिए उमेश को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उमेश मना कर देता है। चंदर इस बात से थोड़ा दुखी हो जाता है। उमेश पासपोर्ट बनाने वाले दलाल से मिलना चाहता है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है। इसके लिए उमेश एक योजना बनाता है और आवाज और नाम बदल कर उससे बात करता है और दलाल उसे मिलने भी बुला लेता है। अब आगे।
ले आपका पान और माचिस।
कहाँ है वो पासपोर्ट वाला? यहीं तो आने के लिए कहा था उसने।
अरे पान लगा दे, 120 नंबर।
दो मिनट उस्ताद।
ओ, तो पान खाने का मन कर रहा है बच्चू? अब कहाँ जाएगा बचकर?
बे, ओए कौन है?
तू क्या सोच रहा था, मेरे पैसे मार कर बच जाएगा?
छोड़ मुझे,
निकाल मेरे पैसे।
ओ, तो तू है? कैसे पैसे? अबे किस चीज के पैसे? छोड़
मेरे पासपोर्ट वाले पैसे, निकाल अभी इसी वक्त।
नहीं है मेरे पास। क्या कर लेगा तू?
मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं।
अच्छा, तू मुझे नहीं छोड़ेगा? हैं अबे कबूतर, तू तो क्या, तेरा बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ए
अबे तेरी,
तूने मुझे मारा।
अबे मोंटी,
छोड़ मुझे।
क्या हुआ उस्ताद?
अबे यार, इसको इसके पैसे वापस चाहिए तो भाई को जरा सूद के साथ इसके पैसे वापस कर दे यार।
पैसे चाहिए?
दे दे
दे। पैसे तेरे?
और ले, और दे, और दे, और दे।
अब भाई आप गलत समझ रहे हो, इन्होंने मेरे पैसे सच में रख लिए।
थोड़े से और दे दे यार।
पैसे
और ले। आप गलती कर रहे हो भाई, वो मेरे पैसे।
सूद के साथ और दे।
क्यों मेरे फ्राइड चिकन? मिल गए पैसे? बहुत है या और चाहिए? ब्याज भी दूं?
चल मोटी, अपनी जिंदगी में कभी पैसे नहीं मांगेगा।
आ गए चंदर, तुम कुछ बात बनी क्या?
जी नहीं, कहीं बात नहीं बनी।
कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी।
हाँ, सच बात है, उतना आसान भी नहीं यहाँ नौकरी मिलना जितना कि लोग सोच कर आते हैं।
उमेश ने जिन लोगों के नंबर दिए थे उनसे बात हुई?
हाँ हुई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई कहता है तुम्हारे पास अनुभव नहीं, तो कोई कहता है कि अभी जगह खाली नहीं, जैसे ही जगह होगी बता देंगे। पता है आज कई घंटे तक एक फैक्ट्री के सामने धूप में लाइन में खड़ा रहा, और जब नंबर आया तो वो कहते हैं कि भर्ती हो चुकी है, अब जब और लोगों की जरूरत होगी तो बोर्ड लगा देंगे।
परेशान मत हो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हें कोई ना कोई अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें उमेश के अलावा कुछ और लोगों से बात करनी चाहिए जो तुम्हें नौकरी दिलवाने में मदद कर सके। चलो अब परेशान मत हो।
फिर भी कल्पना जी, क्या क्या उम्मीदें लेकर आया था मैं घर से, लेकिन यहाँ के हालात देख कर तो।
अच्छा चलो, अब तुम ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ सुनाती हूँ।
क्या?
एक मिनट। ये सुनो।
कितना अच्छा गाना है ना?
तुम्हें पसंद है?
बहुत पसंद है, मैं गांव में ये सुनता था।
मुझे लगा तुम काफी निराश हो, और अगर तुम्हें इस वक्त अपने यहाँ का कुछ सुनने को मिले तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा चंदर, तुम तो उमेश के ही गांव के रहने वाले हो ना?
जी हाँ, क्यों?
नहीं बस ऐसे ही।
पूछने की कोई वजह तो होगी?
नहीं, वो दरअसल एक लड़की है कविता, वो भी उसी गांव की है।
हाँ हाँ, मैं जानता हूँ उसे, घर पर बात करनी होती है तो उसी के घर पर फोन करता हूँ। लेकिन वो लड़की तो सोबन के साथ गांव छोड़कर भाग गई थी ना?
अरे नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। सोबन तो बस उसे दिल्ली लेकर आया था। वो तो काफी समझदार लड़की है, आजकल मुंबई में है, एक अच्छे मॉल में नौकरी कर रही है।
अच्छा, पर गांव में तो सब लोग यही सोचते हैं कि वो सोबन के साथ घर छोड़कर भाग गई, और उसके बारे में आज भी गांव में तरह तरह की बातें होती हैं।
गांव वालों की छोड़ो, उसके घर वालों के बारे में कुछ बताओ, वो लोग कैसे हैं?
क्या बताऊं, उसके माँ और पिताजी तो दोनों बीमार ही रहते हैं।
अच्छा,
कविता के इस कदम ने उन्हें हिला कर रख दिया। अब तो उनकी गाय की देखभाल भी मेरी भौजी ही करती है।
अच्छा चंदर, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी।
जी बोलिए।
कहना अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या करूं, बताना जरूरी भी है। दरअसल वो किराए पर जो लड़के यहाँ रहते हैं, वो एक दो दिन में वापिस आ रहे हैं, और उनके आने के बाद यहाँ पर तुम्हारा रहना मुश्किल होगा। इसीलिए अगर तुम कोई और जगह, मेरा मतलब अभी नहीं लेकिन कल तक, तुम्हें अपने रहने का कोई और इंतजाम करना होगा।
लेकिन ठीक है, मैं देखता हूँ।
सुनो कविता, मैं भी निकल ही रहा हूँ, कहो तो मैं तुम्हें अपनी बाइक से स्टेशन पर ड्रॉप कर दूँ?
नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी।
ओफो कविता, मैं सिर्फ तुम्हें लिफ्ट दे रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारा स्टेशन मेरे रास्ते में ही पड़ता है।
फिर भी राजेश।
ओके ओके, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है, तुम मुझे इसका किराया दे देना, अब तो खुश।
ठीक है, चलो।
चलो। अच्छा कविता, एक बात बताओ।
पूछो।
वो कल तुम फ्री हो क्या?
नहीं, दरअसल कल मुझे कुछ काम है।
अब ऐसा भी क्या जरूरी काम है?
राजेश, दरअसल कल मुझे अपने ग्रेजुएशन के बारे में पता करने जाना है।
मतलब?
मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर लूँ, बस इसी बारे में किसी स्टडी सेंटर पर पता करने जा रही हूँ।
वाओ, मतलब तुम ग्रेजुएशन करने वाली हो?
हाँ, सोचा तो है।
अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे कविता, मैं भी MBA के बारे में सोच रहा हूँ।
अरे ये तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ, प्रोफेशनल कोर्स है, मेरे पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है ही। MBA कर लूंगा तो कहीं भी अच्छी जॉब मिल सकती है। वैसे कविता, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी BCOM के साथ साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लो, ज्यादा बढ़िया होगा।
लेकिन वो कैसे करूँ?
अब देखो, सेल्स का एक्सपीरियंस तो तुम्हारे पास है ही। अब अगर तुम इसी से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेती हो, तो तुम्हें जल्द ही किसी और कंपनी में सेल्स ऑफिसर की नौकरी मिल सकती है।
सच?
हाँ, ये तुम्हारे करियर के लिए भी काफी अच्छा रहेगा।
कह तो तुम ठीक रहे हो, पर क्या तुम मुझे ऐसे कोर्सेज के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो?
नो प्रॉब्लम, मेरे पास इनके बारे में कुछ जानकारी है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा।
ठीक है,
लेकिन अब फिलहाल तुम्हें स्टेशन पर ड्रॉप तो कर दूं। चलो बैठो।
चलो।
चंदर, ये उमेश कहाँ रह गया? सुबह का गया है, कह रहा था कि किसी से पासपोर्ट के चक्कर में मिलने जा रहा है, उसके कुछ पैसे वैसे फंस गए हैं।
अरे कल्पना जी, आप चिंता मत कीजिए, आ जाएगा, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, मिल गया होगा कोई नया दोस्त। लगता है आ गया।
रुको, मैं दरवाजा खोलती हूँ।
उमेश, तुम पीकर आए हो?
हाँ, पीकर आया हूँ। तो तुम कौन होती हो मुझसे सवाल पूछने वाली?
उमेश,
तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरी बीवी हो।
क्या बोल रहे हो उमेश, तुम भूल रहे हो मैंने तुम्हें इस घर में रहने दिया तो सिर्फ सोबन की वजह से, तुम उसके दोस्त हो इसीलिए। अगर तुम उसके दोस्त न होते तो तुम्हें धक्के मारकर अभी घर से बाहर निकाल देती। अरे तुम तो नशे में ये भी भूल गए कि इस घर में एक छोटी बच्ची भी है, क्या असर पड़ेगा उस पर तुम्हारी इन बातों का?
उमेश, मुझे लगता है तुम्हें अंदर चलना चाहिए।
यार चंदर, उसने मेरे सारे पैसे मार लिए यार, मेरा पासपोर्ट भी नहीं बनाया, और देख देख जब मैंने उससे पैसे मांगे तो क्या हालत की है।
हाँ हाँ, हम बात करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन पहले तू अंदर चल।
छोड़ूंगा नहीं साले को, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
अंजलि, वैसे एक बात तो है।
वो क्या नरेन?
भाई, जब हमारे प्रवासी भाई अपना गांव छोड़कर शहर आते होंगे तो यहाँ आने के बाद उन्हें वहाँ की याद तो बहुत आती होगी।
हाँ नरेन, याद तो आएगी ही ना, जिस मिट्टी में हम खेले कूदे हैं, जिसमें बड़े हुए हैं, उसे छोड़कर, वहाँ बसे अपने परिवार को छोड़कर जब हम शहर आते हैं तो याद आनी तो स्वाभाविक ही है।
लेकिन किस चीज की याद सबसे ज्यादा आती है, और इन यादों से लोग कैसे लड़ते हैं, इस बारे में हमारे प्रवासी श्रोताओं से बात की हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने, और उन्होंने क्या क्या बताया आइए सुनते हैं।
सबसे ज्यादा याद तो बीवी बच्चे अपने माता पिता उनकी यादों में याद बुलाना खातर तब थोड़ा सा कभी मनोरंजन कर दें, या जैसे फिल्म देख दी या कोई गढ़वाली फिल्म देख दी या कोई हिंदी फिल्म देख ली, एक वजह से थोड़ा सा याद बुलाना खातर तब थोड़ा सा शांत हो जाऊँ, याद नहीं होंगी।
प्रदेश में हमें माँ बापों की याद आती है, उन यादों से हमें धीरे धीरे सहना पड़ता है। आज याद आई तो चुपके से दो आंसू बहाए और चुप होकर फिर अपने शरीर को बुझा के फिर उनसे हम लड़ पाते हैं।
घर से बाहर जाके सबसे ज़्यादा याद तो मम्मी की आती है और भाई बहनों की याद आती है, अपने पहाड़ों की याद आती है। अपने काम में व्यस्त रह के थोड़ा टीवी देख के थोड़ा फ़ोन करके पूछती हूँ घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, खेती कैसी चल रही है, सबके बारे में पूछती हूँ, सहेलियों के बारे में पूछती हूँ। थोड़ा इन यादों से मन को शांति मिलती है, मन हल्का हो जाता है।
प्रवास के दौरान सबसे अधिक याद मुझे अपने भाई बहनों, बूढ़े माँ बापों की और अपने गांव गलियों दोस्तों की याद आती है। वहाँ जाके हम बड़ी मुश्किल से इनका सामना करते हैं, नए नए दोस्त बन जाते हैं और नए नए लोगों से मुलाकात हो जाती है, उनसे गहरा संबंध बन जाता है, जिस कारण धीरे धीरे मन थोड़ा शांत हो जाता है। एक छोटी सी आस दिल में लगी रहती है कि हम दशहरे, दीपावली या रक्षाबंधन पे घर जाएंगे और अपने भाई बहनों के गले मिलेंगे।
सच कहा है, अब जो कुछ गांव में है वो शहर में तो मिल नहीं सकता। खैर दोस्तों, गांव की यादों को दिलों में बसाए रखें, क्योंकि यही यादें आपको शहर की भीड़भाड़ से जूझने की शक्ति देती हैं।
वैसे नरेन, अनु दिल्ली से हमें SMS करती हैं कि वो मणिपुर में रह रहे अपने परिवार को बहुत मिस करती हैं।
अनु जी, हमारा कार्यक्रम मणिपुर तक तो नहीं जाता, इसलिए माफी चाहेंगे कि हम आपका संदेश आपके मम्मी पापा तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपके परिवार वाले भी आपको उतना ही मिस करते हैं जितना कि आप उन्हें मिस करती हैं।
और अगर आप भी कोई संदेश अपने परिवार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें 9197176782223 पर अपना संदेश अपने नाम और पते के साथ SMS कर दीजिए, या हमें shaherkiore@gmail.com पर ईमेल कर दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका संदेश हमारे कार्यक्रम में शामिल हो।
और अब वक्त है आज की कुछ विश्वास से भरी कहानी का।
आज के इस सेगमेंट में हम जानेंगे मुंबई में स्थित एक गढ़वाली समूह की गतिविधियों के बारे में।
तो चलिए सुनते हैं कुछ विश्वास।
मुंबई में प्रवासी उत्तराखंडियों को एकजुट करने में कई संगठन सक्रिय हैं और इन्हीं संगठनों को संचालित कर रहे हैं कई प्रतिनिधि प्रवासी। इन्हीं प्रतिनिधि प्रवासियों में आज मेरे साथ हैं भिलंग जन जागृति मंडल नाम एक प्रवासी उत्तराखंडी संगठन के अध्यक्ष श्री पप्पू वर्तवाल जी। पप्पू जी, हमारा सबसे पहले आपसे सवाल है कि यह संगठन कब बना?
25-26 साल पहले इस भिलंग जन जागृति मंडल की स्थापना हुई। इस संस्था को बनाने का बुनियादी उद्देश्य ये था कि उस वक्त जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी लोग थे, जो यहाँ पे इस महाराष्ट्र और इस मुंबई नगरी में रहने के लिए आए थे या कुछ काम धंधे के लिए, जो अपने बहुत कोसों दूर कोसों मील आए थे, तो उन्हें एक अपनी समाज में एक पहचान बनानी थी। इसलिए उस वक्त बहुत से लोग जमा हुए और उन्होंने भिलंग जन जागृति मंडल की स्थापना की। मैं सबसे ज़्यादा ये चाहता हूँ कि जो होटल इंडस्ट्री से जो जुड़े हैं, जो हमारे आज नव युवक है, जो बहुत से आज उत्तरांचल की उस पवित्र पावन भूमि से यहाँ आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री में, तो मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ उन बच्चों, उन लड़कों के ऊपर, कि वो हमसे जुड़े और अच्छा काम करें।
उत्तराखंडी समाज के बीच सक्रिय तमाम जनप्रतिनिधियों में से एक शख्सियत और हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, श्री अनिल पैनोली। अनिल पैनोली जी, इस समय भिलंग जन जागृति मंडल कोषाध्यक्ष के पद पर आसीन है।
सभी सुनने वालों को मैं अनिल पैनोली नमस्कार करता हूं। और हमारी संस्था जो है बहुत सारे सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है, चाहे वो विधवाओं को सिलाई मशीन बांटने का काम हो या गरीब बच्चों को फीस बांटने का काम हो, ऐसे सभी सामाजिक कार्यों से हमारी संस्था जुड़ी हुई है।
आपका संगठन दूसरे संगठनों से किस मायने में अलग है?
हमारा संगठन इस मायने में अलग है कि हमारे सिर्फ रंगमंच तक ही सीमित नहीं है, हमारी संस्था और भी बहुत सारे सामाजिक काम करती है।
सदस्यता के लिए क्या खास विशेष तवज्जो है उसके लिए?
सदस्यता के लिए ऐसे कि हमने आजीवन सदस्यता शुल्क है 151 रुपये, 101 रुपये है एक साल के सदस्यता शुल्क, तो ये सारी हैं हमारी सदस्यता के नियम।
जैसे नरेन पलायन के बाद गांव छोड़कर शहर आ जाना, अकेले रहना, ये सब कितना मुश्किल होता होगा हमारे प्रवासी दोस्तों के लिए।
हाँ अंजलि, बल्कि इतना ही नहीं, इससे ज्यादा मुश्किल होता है उस अकेलेपन का मुकाबला करना। कई बार तो इसकी वजह से कुछ लोग हताश और मायूस भी हो जाते हैं।
तो नरेन, इससे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
अंजलि, इस बारे में भैजी से बात करते हैं।
तो ठीक है, बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार नरेन। नमस्कार अंजलि।
नमस्कार भैजी।
हाँ भाई, बताओ आज क्या समस्या है आपकी?
भैजी, समस्या हमारी नहीं है, समस्या तो हमारे प्रवासी भाइयों की है, जिसका हम समाधान ढूंढ रहे हैं।
भैजी, हमारे प्रवासी भाई शहर में आने के बाद अकेलेपन से जूझते रहते हैं, कई बार तो वो मायूसी के भी शिकार हो जाते हैं, क्या इस अकेलेपन से बचने का कोई उपाय है?
प्रश्न तो काफी अच्छा है और ये समस्या बड़ी गंभीर है। सचमुच ऐसा होता है कि जब लोग गांव से शहर आते हैं तो अकेले रहते हैं, शहर में किसी को जानते तक नहीं, कई बार शहर की बोलचाल की भाषा से भी वो अनजान होते हैं, और ऐसे में अकेलेपन और निराशा के अंधेरे घेरने लगते हैं। लेकिन इसका समाधान है, और इसका सबसे बड़ा समाधान है मेलजोल।
मेलजोल?
मेलजोल, मेलजोल से मेरा मतलब है हमारे प्रवासी भाई जब शहर में रहें और वो कहीं भी जाएं तो वहां रहने वाले लोगों से मेलजोल बढ़ाएं, आपस में बात करें, कुछ अपनी संस्कृति के बारे में दूसरों को बताएं, तो कुछ दूसरों की संस्कृति से सीखें, उसे जानें।
लेकिन भैजी, बड़े बड़े शहरों में कई जगह ऐसा भी सुना जाता है कि लोग आपस में बात तक नहीं करते, सभी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में मेलजोल?
तो क्लब ज्वाइन कर लें, जहां आपको अपने समुदाय के लोग मिल सकें, उनसे आप संपर्क करें, उनसे बातें करें, अपने हर त्योहार को, अपनी हर खुशी को मिलजुल कर उनके साथ मनाएं, उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें।
जी भैजी, बिल्कुल।
साथ ही आप जिस शहर में रहते हैं उसे जानिए, जब भी वक्त मिले तो एक नई जगह घूमने जरूर जाएं, और शहरों में मनोरंजन के बहुत से साधन होते हैं, फिल्में देख सकते हैं, नया कुछ सीख सकते हैं, पढ़ने का अगर शौक रखते हो तो उपन्यासों की कोई कमी नहीं, शहरों में इन्हें आप काफी कम दामों में खरीद भी सकते हैं, और अगर ऐसा ना हो सके कोई बात नहीं, बहुत सी लाइब्रेरियां हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी खाली न रहें, खुद को अकेला महसूस न होने दें, अपने आप को व्यस्त रखें, और हाँ, बीच बीच में परिवार के सदस्यों से फोन पर बात जरूर करें।
बिल्कुल भैजी। दोस्तों, आपने सुना भैजी ने अभी क्या बताया, तो भैजी की बातें मानिए और अपने आप को अकेलेपन का शिकार होने से बचाइए। भैजी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
गड़कोटी गो की है बांध राजी, तेरी गोरी गाते माजी या लगे, तेरा गो की पुर भी छा जायो मां बांध, अधगत जिकुड़ी मारो होस लगे।
गड़कोटी गो की है बांध राजी, तेरी गोरी गाते माजी या लगे, तेरा गो की पुर भी छा जायो मां बांध, अधगत जिकुड़ी मारो होस लगे।
पासो जी कुड़ी का होरी पोरी। दूर बीछा ज्वालियों माँ बांध हद का तेज कुड़ी मारों से लेंगे
और अब वक्त है काम की बात का। दोस्तों पिछले हफ्ते हमने आपको जानकारी दी थी दिल्ली और मुंबई में स्थित कुछ समूहों के बारे में ताकि आप शहर में खुद को अकेला ना महसूस करें।
नरेन आज के काम की बात तुम्हारे काम भी आएगी।
वो कैसे?
क्योंकि आज हम बात करेंगे मुंबई और दिल्ली के कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में ताकि आप शहर में काम करते करते कभी बोर ना हो।
तो चलिए सुनते हैं काम की बात। वही वैसे तो दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत का एक प्रमुख महानगर भी। इसकी यही बात इसे खास बनाती है। और जहां तक घूमने फिरने की बात है तो दिल्ली में ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं।
जैसे?
जैसे पुरानी दिल्ली का लाल किला, निजामुद्दीन के पास स्थित हुमायूं का मकबरा, मेहरौली के पास कुतुब मीनार और प्रगति मैदान के पास पुराना किला। और अगर आप पुराना किला जाते हैं तो नजदीकी चिड़ियाघर भी जरूर जाएं। इन जगहों पर 5 से 10 रुपए का प्रवेश शुल्क भी लगता है।
और अगर आप पार्क में घूमना चाहते हैं तो दिल्ली में कई खूबसूरत बाग भी हैं। इनमें से कुछ खास हैं इंद्रप्रस्थ पार्क जो सराय काले खां के नजदीक रिंग रोड पर बना हुआ है, लोधी गार्डन लोधी रोड पर स्थित है, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस के लिए आप सैदुल अजाब जा सकते हैं, और हाँ शाम के समय राजपथ पर इंडिया गेट के बगीचों की सैर करना ना भूलें। और अगर आप मेरी तरह शॉपिंग करने और खाने पीने के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं दिल्ली हाट जो INA और पीतमपुरा दोनों जगह स्थित है। यहाँ आपको देखने को मिलेगी हर राज्य की संस्कृति और चखने के लिए मिलेगा हर राज्य के भोजन का स्वाद। और इसके अलावा आप शॉपिंग के लिए दिल्ली की कुछ खास मार्केट्स जैसे चांदनी चौक, जनपथ, सरोजनी नगर और लाजपत नगर भी जा सकते हैं। तो ये तो बात थी दिल्ली की। दोस्तों मुंबई में भी ऐसी बहुत सारी घूमने लायक जगह हैं।
जी हाँ दोस्तों, मुंबई में ऐसा ही एक स्थान है गेटवे ऑफ इंडिया। हर शाम यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत और देखने लायक होता है। आप यहाँ पर पैदल घूमकर या फिर नाव में सवारी कर आनंद उठा सकते हैं।
और आप वहाँ मौजूद सरकारी और प्राइवेट बोट से एलिफेंटा केव्स भी जा सकते हैं।
तो भाई ये तो थी बात मुंबई की।
नरेन अगर बात मुंबई की हो रही हो और समुद्र तटों की बात ना हो तो बात कैसे पूरी हो सकती है? दोस्तों आप मुंबई में समुद्र किनारे जुहू बीच, चौपाटी और मरीन ड्राइव पर जरूर घूमने जाइएगा।
तो दोस्तों ये तो हमने आपको बताया दिल्ली और मुंबई की उन खूबसूरत जगहों के बारे में जहां आप घूमने जा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी।
और अगर आप इस विषय से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें 9197176782 पर SMS कर सकते हैं।
दोस्तों अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी चिट्ठी की।
आज हमने जिस चिट्ठी को शामिल किया है वो चिट्ठी हमें लिखी है टिहरी गढ़वाल से विशाल गुसाई जी ने। ये लिखते हैं 1998 में सबसे पहली बार मैं दिल्ली गया। दिल्ली में एकदम नया था, ना काम का कोई अनुभव था और ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा, इसीलिए सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने लगा। लेकिन एक दिन मुझसे गलती हो गई और एक ग्राहक की पैंट पर खाना गिर गया। वो बिना खाना खाए ही चला गया। उसके बाद होटल के मालिक ने 200 रुपए मेरे हाथ में पकड़ाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं बहुत रोया। मेरे भाई ने 8-10 दिन बाद मुझे एक ऑफिस में चाय पानी पिलाने के काम पर लगा दिया जहाँ पर वो सिर्फ 1500 रुपए सैलरी देते थे लेकिन काम बहुत सारा करवाते थे। पैसा इतना कम था कि गुजारा होना मुश्किल था, इसलिए मैंने वो नौकरी 2 महीने करके छोड़ दी। फिर मैंने मन बनाया कि घर जाकर फिर से पढ़ाई करूंगा और एक अच्छी नौकरी पर लगूंगा। मैंने अपने सामान का बैग उठाया और 1500 रुपए जेब में रखकर दिल्ली के बस अड्डे पर बस का इंतजार करने लगा। यहाँ मुझे मेरी ही तरफ का एक आदमी मिला। उसने कहा कि वो ड्राइवर है और यहाँ से चंबा जा रहा है। मैं भी चंबा ही जा रहा था। मुझे लगा कि चलो घर तक का साथ हो गया। बातों ही बातों में हम काफी घुल मिल गए। उसने कहा कि उसकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की हुई है। इसी दोस्ती में उसने मुझसे कहा कि मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं और घर कुछ ज़रूरी सामान लेकर जाना है, मुझे 1,000 रुपये दे दो, चंबा पहुँचते ही तुम्हें लौटा दूंगा। मैंने सोचा साथ ही तो जा रहे हैं, मेरे पास 1,500 रुपये थे, मैंने 1,000 रुपये उसे दे दिए। उसने कहा आप यहीं खड़े रहो, मैं आधे घंटे में सामान लेकर आता हूँ। मैंने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन वो गया तो फिर लौट कर नहीं आया। विशाल गुसाई जी, आपकी ये चिट्ठी हमने पढ़ी और आपके प्रवास से जुड़े इस अनुभव को हमारे साथ साथ हमारे श्रोताओं ने भी सुना।
और विशाल गुसाई जी, आपकी इस चिट्ठी के लिए जब चलें शहर की ओर की तरफ से आपको दिया जाता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग, बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आप भी जीत सकते हैं ये खूबसूरत इनाम, लेकिन इसके लिए अपने प्रवास से जुड़े खट्टे मीठे अनुभवों को चिट्ठी के जरिए हमें भेजते रहिए। चिट्ठियों के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
और अब समय है संदेशों को सुनने का।
नमस्ते, मैं नो चित्रा रावत, ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस जाखणी, जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। मैं रेडियो का माध्यम से अपरी दीदी थे एक रेबार दी होनु छू। मैं दीदी दिली रोंदी। दीदी प्रणाम। हम घर पुन सब ठीक ठाक छिन, पिताजी तबियत भी ठीक छी, उतर दीदी भी ठीक छी, मुड़ी चाचा को घर पुन भी सब ठीक छिन। उमेश और अंकिता स्कूल जाया रोंदा। 16 जुलाई उत्तरा दीदी सगाई भी हुएगी, सगाई दीदी पौड़ी में हुए, और शायद अक्टूबर नवंबर में भी ओलू। जब भी ओलू तो बम्बई बेटिन गुडवेज शायद बुलोणो ते तई बट ओलू। सास जी, ससुर जी, सभी बड़ा लोगों ते मेरे प्रणाम जी। तो की तबियत कंची आप और घर परिवार दिए क्या? नानी स्कूल तो जानी बोली जवार बेटिन स्वार जाए तुम तो तबार बेटिन संपर्क नहीं हुए तुमसे ही डेढ़ दुई महीना मोड़ वाल छिन आप और तबियत तो ख्याल रहो क्या?
मेरा नाम दर्शन लाल, गाँव मेर पिंगला पानी, जिला रुद्रप्रयाग, जोटनो ब्यूरा वेतनो और शिमला सोगी रोंदन। घर फना हाल समाचार भी परखा पानी भी काफी वोणो और नीले गुडे भी वोणी, फसल पात भी बढ़िया छ। घर फन काकड़ी छिन लगी, मुंगरी छिन लगी, गदड़ा छन, शमला छन, यब तक भी सेब वाल वोणा, लीची वोली, मुंगरी मंगरी तो भी वोली, दिवाली दशहरा भी होना छन। तो आप तभी मैं मिलने चाहनो छू, हर टाइम है नहीं लोगों, हमारे बच्चे भी ठीक छन, और तुम्हारा लोड का थे सुबह पास हुएगी। हाँ, ये रे बार सुनिए, आप जरूर फोन करा, संपर्क करा और मिलने की कोशिश करा।
तो दोस्तों, ये तो थे वो संदेश जो आपने हमारे कार्यक्रम के जरिए अपने अपनों के लिए भेजे थे।
और दोस्तों, अगर आप भी अपना कोई संदेश अपने परिवार तक या शहर में काम कर रहे अपने किसी रिश्तेदार तक या दोस्त तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें फौरन SMS कर दीजिए।
हमारा नंबर है 9197176782।
दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, और अब समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमें अपने प्रवास से जुड़े हुए अनुभव अपने खतों या ईमेल के जरिए जरूर भेजते रहिए।
और इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज भणज और दिल्ली और मुंबई के अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे। और जाते जाते एक जरूरी बात,
हमारे प्रवासी दोस्त मिलजुल कर अपना क्लब तैयार कीजिए और उस क्लब से जुड़ी गतिविधियों को चिट्ठी के जरिए हमें भेजिए। हम आपकी चिट्ठी को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे ताकि हमारे अन्य प्रवासी श्रोता आपके अनुभवों और गतिविधियों का लाभ उठा सकें।
हमारा पता है,
कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
और ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
तो इसी के साथ इजाजत दीजिए,
नमस्कार।